Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Bhakti Shakshantava Salmi Matao, Isne Me Veno Aap Sarubhant. Taittiriya Aranyak Koli Karke, ओंकार की उपासना विषय को प्रसंग चल रहा है, जिसमें चर्चा की जा रही है कि वह जो ओम है उस ओम में तीन व्याहृतियां हैं। उन तीन व्याहृतियों का तात्पर्य क्या है, तो उसको लेकर के क्रम से बतलाया कि वह तीन व्याहृतियां इस बात को संकेत करती हैं कि अकार मात्रा से होने वाली जो भू नाम की व्याहृति है, वह इस पृथ्वी आदि लोक का अपने में आरोपण करती, और अकार मात्रा से होने वाली जो व्याहृति है वो अपने में अंतरिक्ष लोक का आरोपण करती है, और जो स्व नाम की व्याहृति जो है जो मकार से हुई वह देवलोक का अपने में आरोपण। ठीक इसी प्रकार से जैसे लोकों का आरोपण, उसी प्रकार से अग्नियों का आरोपण, देवों का आरोपण, वेद का आरोपण, ये संपूर्ण आरोपण उसमें किए गए। और आरोपण का तात्पर्य क्या है, तो आरोपण का तात्पर्य यह है कि उन समस्त लोकों में, समस्त अग्नियों में, समस्त देवों में, समस्त वेदों में यह जो ओम है उसकी जो सत्ता है वो अनुस्यूत है, वो उसकी सत्ता जो है वो ओतप्रोत है, ऐसा संकेत कर। अर्थात ओम की व्याप्ति का यहां पर स्वरूप दिखला रहे। व्याप्ति शब्द को आप जानते होंगे, व्याप्ति किसे कहते हैं, तो व्याप्ति का सामान्य रूप से अर्थ किया जाता है साहचर्य नियम ही व्याप्ति है। साहचर्य नियम को व्याप्ति कहते हैं। साहचर्य क्या, जिसकी साथ में चर्या हो, जिसकी साथ में स्थिति हो, वगैर साथ में जिसकी स्थिति न हो, इसको कहते हैं साहचर्य नियम। जैसे उदाहरण के लिए आप लोग सुनते भी रहते होंगे, धूम जो है वह धूम की क्रिया, धूम की चर्या कब होती है, स्वतंत्र होती है अथवा किसी के साथ में होती, तो क्या कहो, धूम की चर्या जो है वो किसी के साथ में होती, तो किसके साथ में होती, तो सभी जानते अग्नि के साथ में होती। अग्नि के बिना धूम की चर्या नहीं है, तो जहां जहां पर अग्नि होती है वहां वहां पर क्या होता है, धूम होता है। तो क्या हो गया, ये साथ साथ उनका रहना साहचर्य नियम। अब इसमें व्याप्ति शब्द जब कह देते हैं तो जहां जहां धूम है वहां अग्नि की व्याप्यता है, अग्नि की व्यापकता है, वहां अग्नि विद्यमान है, अग्नि के बिना जो है धूम की सत्ता नहीं, यही तो बतलाती। लेकिन अग्नि के बिना धूम की सत्ता नहीं, और साहचर्य नियम से ऐसा मान लें कि धूम के बगैर जो है अग्नि की सत्ता नहीं, तो कहा ये नहीं होगा। अग्नि के बगैर धूम की सत्ता होती है और नहीं भी होती है। कहो कैसे, कुछ अंशों में अग्नि की सत्ता जहां है वहां धूम है, और कुछ ऐसे भी अंश देखे जाते हैं जहां अग्नि तो होती है लेकिन धूम नहीं होता। आप रसोई घर में देखोगे तो वहां भी धूम मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा। कहा अग्नि को लेकर के, गोष्ठ आदि चत्र आदि में देखेंगे तो वहां भी अग्नि को लेकर के धूम की सत्ता दिखलाई देती। लेकिन ऐसे भी स्थल है जहां अग्नि की सत्ता है लेकिन धूम की सत्ता, वो कहां? तो कहने लगे जैसे लोह पिंड के अंतर्गत अग्नि की सत्ता है लेकिन वहां धूम नहीं है। तो क्या हुआ? तो इससे साहचर्य नियम में अन्वय भी दिखलाई दे रहा है और वितरेक भी, माने भाव भी दिखलाई दे रहा है और अभाव भी दिखलाई दे। ऐसे ही जहां पर लोक है, जहां पर देव है, जहां पर वेद है और जहां पर छंद है और जहां अग्नि आदि है, वहां पर क्या है? कहा ओम विद्यमान है। ओम की सत्ता के बगैर न कोई लोक है, न कोई वेद है, न कोई अग्नि है, न कोई छंद है और न कोई देव आदि है। जहां जहां भी देव की प्रतीति हो रही है, अग्नि आदि की प्रतीति हो रही है, लोकों आदि की प्रतीति हो रही है, वो सारी प्रतीति कब है? तो कहने लगे ओम की सत्ता को लेकर के। ओम की सत्ता के बगैर इनकी स्थिति नहीं। अब आप लोग सब सुनते रहते हो, अंगूठी जहां भी हम देख रहे हैं, चेन जहां भी हम देख रहे हैं, तो उस अंगूठी का होना, उस चेन का होना, अंगूठी चेन आदि का, कटक कुंडल आदि का व्यवहार करना, ये सारा व्यवहार कब होता है? तो कहने लगे वहां पर अंगूठी में स्वर्ण बैठा हुआ है, उस चेन आदि में स्वर्ण बैठा हुआ है। उस स्वर्ण के अभाव में न तो अंगूठी का व्यवहार होगा, न चेन का व्यवहार होगा, ये सब व्यवहार संभव नहीं। ठीक इसी प्रकार से ओम के बगैर ये एक भी व्यवहार नहीं हो। अब ऐसे ही यहां पर समझो, चित्तम चिच्च विजानीयात। कहने लगे चित्त और चित्त दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? एक है चित्त और एक है चित्त। तो चित्त और चित्त इन दोनों को जानो। कैसे जानो? तब संकेत किया, चित्तम चिच्च विजानीयात। चित्त और चित्त को जानो। किस प्रकार से? तो कहने लगे तकार रहितम यथा। अब दोनों जगह देखो, कोई ऐसी वस्तु है जिसमें कोई भेद नहीं है, जिसकी सत्ता विद्यमान है, और कोई ऐसी भी चीज है कि जो एक जगह है एक जगह है। अब क्या है? तो चित शब्द है। अब चित शब्द में क्या आया? दूसरा चित्त शब्द है। तो दूसरे में क्या है? एक में चित, तो केवल तकार मात्र, और दूसरे में चित्त माने डबल तकार, एक तकार और जुड़ गया। अब जो है चित अव्यक्त है। चित कैसा? यहां सोना तो दिखाई देता, ये तो उदाहरण लौकिक, लेकिन चित के दर्शन नहीं होते। क्या ध्यान? चित हमें दिखलाई नहीं देता। और दिखलाई क्या देता है? दिखलाई देना या उसका ज्ञान होना, व्यवहार में आना, वो क्या दिखलाया रूप होना, वो कौन है? चित्त। चित का हमें भान हो रहा है, चित्त काह में भान हो रहा है, चित्त की प्रतीति हो रही है और चित्त कार्य करते हुए भी दिखलाई दे रहा। लेकिन चित्त न तो चित्त का हम भान कर पा रहे हैं, न उसके द्वारा होता हुआ कार्य देख रहे हैं। अब सुनकर के हम कह तो सकते हैं कि चित्त के बगैर नहीं होगा, यही तो समझना। लेकिन ये समझते हुए भी हम केवल चित्त में कोई क्रिया करने में समर्थ नहीं होते। जब भी क्रिया करने में समर्थ होते हैं तब किसको लेकर के होते हैं? चित्त को लेकर के। अब यहां तकार को यदि हटा दिया जाए, तकार आ गया तो भी चित्त जो था कहीं चला गया। चित्त जो है तकार के आने पर भी चित्त वहां विद्यमान, और तकार यदि आया है तो कहां आया? चित्त में ही आया, चित्त से अलग तकार नहीं आया। और उस तकार को हटा दिया तो भी क्या रह गया? चित्त रह गया। तकार तो चला गया लेकिन चित्त जैसे का तैसा। अब वो चित्त जो है वही हमारी दृष्टि का विषय, और दृष्टि का विषय बने कैसे? चित्त ही तो दृष्टि देने वाला, चित्त ही नहीं रहा तो दृष्टि कहां से हो? और चित्त है तो दृष्टि है, और दृष्टि है तो क्या है? सृष्टि है। यदि दृष्टि है तो सृष्टि है, और दृष्टि नहीं है तो आप लोग सुनते रहते हो तुलसीदास ने क्या कहा, मूंदो नयन कतहुं कोऊ नाहीं। ये सब कुछ सारा संसार सुख दुख है संबंधी आदि जो कुछ भी है कब तक है? जब तक दृष्टि है। और दृष्टि को मूंद लिया अर्थात दृष्टि ढक गई तो क्या रह गया? कहा कुछ भी नहीं रहा, कतहुं कोऊ नाहीं, ये संकेत। और दार्शनिक भी इसी बात को कहते हैं, क्या कहते हैं? दृष्टि सृष्टिवादो, सारी सृष्टि किसमें है? कहा दृष्टि, और दृष्टि नहीं है तो सृष्टि। तो सारी चर्या सारे लोक वेद अग्नि आदि कहां हैं? तो कहा चित्त में, और चित्त नहीं है तो कहा ये नहीं। अब जो है चित्त, तो क्या चित्त का मतलब है कि जहां पर चित्त और दूसरा जो तकार है उन दोनों तकार की क्या हो गई? एकता हो गई, अवेद हो गया। और जहां पर एकता हो गई तो वहां पर ही ये सारी चर्या है। एकता का मतलब मिल गई। तो अब यहां पर एक चीज और समझ लेना, चित्त जो है तकार के रहने, द्वितीय तकार के रहने पर भी है और उसके न रहने पर भी है। लेकिन द्वितीय तकार जो है बगैर आश्रय के टिक सकता? तो चित्त का बगैर आश्रय के टिकना संभव नहीं, और चित्त का जो है किसी आश्रय की उसे आवश्यकता नहीं, वो स्वतः स्वतंत्र रूप से स्थित है। लेकिन यहां पर स्वतंत्र रूप से स्थित जो चित्त और तकार जो है बगैर आश्रय के नहीं टिक सकता, दोनों मिल गए। और जो सदा रहे वो तो क्या कहते हो, जो सदा रहे तीनों खालों में रहे, भूत भविष्य वर्तमान की जहां है जो है गति हो, वहां पर भी जिसकी विद्यमानता हो, तो उसे क्या कहते हो? सत्य कहते हो। उसे क्या कहते हो? सत्य कहते हो, सत्य कहते हो। और जो कभी रहे कभी न रहे उसे क्या कहते हो? असत्य कहते हो। तो यहां क्या हुआ? सत पदार्थ और असत पदार्थ का योग हुआ। किसका योग हुआ? सत पदार्थ का और असत पदार्थ का। अब शास्त्र की भाषा में कहो तो क्या कहो? सत्यानृते मिथुनी कृत्य अहम ममेदम इति नैसर्गिको अयं लौकिक व्यवहार। जहां पर है ब्रह्म सूत्र के भाष्य में चर्चा की तो वहां क्या बतलाया? कहने लगे सत्य एक पदार्थ और दूसरा पदार्थ असत्य। तो सत्य और जो असत्य है, अनृत है, जो रित नहीं है, तो सत्य और अनृत का, रित और अनृत का क्या हो गया? कहने लगे हैं एकत्व हो गया, योग हो गया, मिल गए। और मिल गए तब क्या हुआ? तो कहा अहम और मम है, मैं और मेरा। ये जो लोककृत व्यवहार है वो होने लगा। और ये कैसा हुआ? उनकी इस ग्रंथि को लेकर के, इस मिश्रता को लेकर के क्या है, ये नैसर्गिक हो गया, स्वाभाविक हो गया। ये सारा संसार बन गया है, तो लोक भी हो गया, देव भी हो गए, वेद भी हो गए, अग्नि भी हो गई, छंद भी हो गए, ये सारा का सारा व्यवहार हो गया। संकेत ये कि ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी ओम क्या है, तो ओम को क्या कहा? शब्द नहीं कहा, वाक्य नहीं कहा, क्या कहा? वर्ण अक्षर। क्या कहा है? अक्षर। ओम क्या है? अक्षर। और अक्षर का मतलब जिसका किसी भी काल में अभाव छह नहीं हो, माने अभाव, जिसकी सत्ता सर्वथा विद्यमान है। तो इसलिए वो कैसा हुआ? सत। और वहीं एक शब्द और प्रयोग कर दिया, क्षर। अक्षर और क्षर, क्षर कैसा है? तो उसे क्या बतलाया? जो क्षरणशील है, परिवर्तनशील है, उसे क्या कहा? क्षर। और क्षर और अक्षर दोनों का योग हो गया है, तो सारा लोक वेद आदि सब हो गए। ये संकेत। अब कहने लगे गीता में आप लोगों ने 15वें अध्याय में पाठ भी करते हो, सुनते भी हो, तो वहां क्या कहा? द्वा विमौ पुरुषौ लोके, लोक में कहा। क्या कहा? वेद में नहीं कहा, कहां कहा? लोक में। लोक का मतलब जहां पर दृष्टि भी है, दृश्य भी है और दृष्टा भी है, वही लोक होता। क्योंकि लोक शब्द का अर्थ है लोक्यते भुज्यते इति लोक। तो जहां लोकना हो, लोकना माने देखना, जहां देखना हो, और देखना कहां होगा? तो देखने वाला होगा और उसकी दृष्टि होगी, और कोई पदार्थ होगा तो भी तो देखेगा, तब वहां दृश्य दर्शन और दृष्टा भाव। और जहां पर दृश्य दर्शन दृष्टा भाव है वहां पर क्या है? उसी का नाम है लोक। उसे क्या कहेंगे? लोक। अब यहां पर जो संकेत करते हैं कि ये तो इस प्रकार से बतला दिया, तो जहां पर दृष्टि है वहां लोक है, लेकिन लोक को क्या बतलाया? क्षर। सारे लोक को क्या कह दिया? क्षर। और ओम को क्या कह दिया? अक्षर। तो अब वहां कहा कि दो पुरुष हैं, उन दो पुरुष में एक की स्थिति क्या बतलाई? क्षराः सर्वाणि भूतानि। वहां गीता की बात है। क्या कहा? जो क्षर रूप पुरुष है वो कैसा है? कहने लगे वो संपूर्ण लोक, संपूर्ण भूत रूप है। और वो सारे भूत कैसे हैं? का छह सील, कभी उनका होना कभी न होना। तो क्षरा सर्वाणि भूतानि, और जो कभी हो कभी न हो वो कैसा है? तो कहा मिथ्या है, अनित्य है, मनुष्य सत्ता से हीन है। अनित्य का मतलब और कुछ नहीं, माने अपनी सत्ता से रहित, उसकी अपनी निजी सत्ता नहीं। और आगे कह दिया कूटस्थो अक्षर उच्यते, और जो सदा स्थित है, और कूट शब्द का अर्थ कर दिया अविचल रूप से स्थित है, इसमें कोई चलायमानता, कोई परिवर्तन नहीं होता, वो क्या है, कहां, वो है अक्षर। ये संकेत किया। अब जो है इसका मतलब क्या, क्षर माने माया, क्षर माने माया, और माया जो है कहां आ गई, कहने लगे अक्षर में। किसका आश्रय लेगी, स्वतंत्र सत्ता तो उसकी है नहीं। अब जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है तो किसी न किसी का आश्रय लेगी, और आश्रय जिसका लिया है तो जब वो आश्रय उसने लिया है, और आश्रय से आश्रय जब अपने आश्रयी से युक्त हुआ तब उसका नाम पड़ गया कूटस्थ। मनी उस आश्रित के आश्रय के आ जाने पर भी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं, जिसमें कोई बदलाहट नहीं, जिसमें कोई भावाभाव नहीं, उसे क्या कहेंगे, कहा अक्षर हो। उसे क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे। तो ऐसा जो अक्षर है वो कौन है, तो उसको ही कह दिया ओम। लेकिन एक ध्यान रखना, यहां क्या कह चुके, ये अक्षर जो है, ये ओम जो है, उस ब्रह्म का अत्यंत समीपी है, उसका कोष है। इसलिए आगे क्या कहने लगे, पहले तो कह दिया अक्षरा सर्वाण भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्चते, और फिर क्या एक बात कह दी, उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेति उदाहरता, और फिर क्या कहा, यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तव्यय ईश्वर, वही सारे लोकों में क्या है, अनुगत है, अनुस्यूत है, व्याप्त है, ऐसा संकेत किया। और यहां तक कह दिया प्रव्यथित, आगे शब्द प्रयोग किया, मने के कणकण में उसकी सत्ता विद्यमान, जैसे अंगूठी के प्रत्येक अवयव में, प्रत्येक कणकण में किसकी सत्ता विद्यमान, सुवर्ण की, वैसे ही जिसकी सत्ता विद्यमान है, चाहे लोक हो, चाहे वेद हो, चाहे अग्नि हो, और चाहे छंद आदि हो, और चाहे देव आदि हो, सर्वत्र जिसकी सत्ता विद्यमान है, तब ये जो हम नाम दे रहे हैं, और उस नाम के द्वारा जिस रूप को हम समझ रहे हैं, नाम के द्वारा क्या होता, नाम क्या है, एक संज्ञा, संज्ञा का मतलब क्या, संज्ञान कराने वाला, बोध कराने वाला, तो शब्द क्या करता, नाम क्या करता, बोध कराता, किसका बोध कराता, तो कहने लगे रूप का, यहां पर समझ लो, तो नाम और रूप क्या है, तो शब्द के माध्यम से जिसका वर्णन किया जाए, जिसका निरूपण किया जाए, उसे क्या कह देते हैं, कहा रूप्यते अनेन इति रूपः। तो नाम और रूप क्या हुआ, नाम और रूप, और सारे संसार का व्यवहार कब होगा, कोई न कोई नाम की कल्पना होगी, और किसी न किसी आकार की, रूप की कल्पना होगी, तभी व्यवहार की प्रक्रिया होती। कोई नाम न हो, कोई रूप न हो, तो व्यवहार कैसे होगा, नहीं होगा। तो जितना भी व्यवहार है वो किसको लेकर के है, नाम की कल्पना को लेकर के, और रूप की। और विचार करो, कहो नाम नित्य है, ये कह सकते हो, कहने लगे नाम नित्य है, कहा ये नाम, तो आप क्या कहो, देवदत्त। तो देवदत्त कब से, तो कहने लगे उसका अमुक डेट में जन्म हुआ है, फिर ज्योतिषियों को, विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया गया, फिर उन्होंने नक्षत्र देखे हैं, काल देखा, योग देखा, और सब देख करके फिर उसको जो है संगीत कर दिया, माने नामित कर दिया, तभी तो नाम रखा। इससे पहले तो क्या मतलब हुआ, जो सदा रहने वाला है वो तो है नित्य, और जो सदा रहने वाला नहीं है, बीच में कल्पना की गई, वो नित्य हो कैसे हो। अब आप कहोगे झगड़े भी कर लेते हम लोग, कहोगे तुलसीदास ने लिखा, क्या लिखा, सुमेरे पवन सुत, ठीक है, बड़ी प्रशंसा की, और नाम की बहुत ही प्रशंसा की गई, लेकिन तुलसीदास के हृदय को हमने समझा। नाम की प्रशंसा है, उसकी उपयोगिता है, ऐसा नहीं कि नहीं उसकी उपयोगिता, वह भी जरूरी है, लेकिन कब तक जरूरी है, कब तक आवश्यकता उसकी है, तो तुलसीदास ने सर्वथा आवश्यकता मानते तो तुलसीदास ये लिखते नहीं। क्या लिखा, नाम रूप द्वय ईश उपाधि। क्या लिखा, एक तरफ तुलसीदास ने भूरी भूरी प्रशंसा की, और दूसरी तरफ क्या लिखा, नाम रूप द्वय ईश उपाधि, दोनों क्या है, कहा रूप भी उपाधि है, नाम भी